नमस्कार भारत, मंगलवार 26 जुलाई, मैं हूं निखिल रंजन। जापान के टोक्यो में एक शख्स ने आधी रात को चाकू मारकर 19 लोगों की हत्या की, 45 लोग जख्मी।
भूतपूर्व कर्मचारी वहां का था, उसने 19 विकलांगियों को जान से मार दिया और 45 काफी घायल हैं, उसमें से कुछ काफी सीरियस हैं जो कि शायद न बच पाए।
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की बलात्कार पीड़ित लड़की को दी भ्रूण हत्या की इजाजत।
इसका जो बच्चा है उसको सर नहीं है, उसका सर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, एनेंसेफेली बोलते हैं उसको, तो उसके वजह से ये बच्चा जिंदा रहने के चांसेस एकदम कम है।
असम में बाढ़ का संकट और गहराया, नए इलाकों में घुसा पानी। भारत सरकार ने चीन के 3 पत्रकारों से वापस जाने को कहा, चीन की मीडिया में कड़ी प्रतिक्रिया। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। जापान के मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक राजधानी टोक्यो के नजदीक विकलांगों की देखभाल के लिए बने एक रिहायशी केंद्र पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। खबरों के मुताबिक इस हमले में कम से कम 45 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 20 की हालत नाजुक बताई जा रही है। समाचार एजेंसी क्योदो के मुताबिक पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भारत ने पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग के अधिकारियों से कहा है कि वो स्कूलों में पढ़ने वाले अपने बच्चों को वहां से हटा दे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम पाकिस्तान से बाहर कहीं करें। भारत सरकार ने यह घोषणा राजनयिक मिशन के लिए कर्मचारियों और उनसे जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद की है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। हिलेरी क्लिंटन के पूर्व प्रतिद्वंद्वी बर्नी सैंडर्स ने अपने समर्थकों से कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए सभी को हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करना चाहिए। फौरन इसी समय हमें जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को हराने की, इसके लिए हमें हिलेरी क्लिंटन को चुनना होगा। ट्रंप से हमारे देश के भविष्य को खतरा है। ये थे डेमोक्रेटिक पार्टी के बर्नी सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि उनकी सरकार देश के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सभी मुख्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। नया संविधान तुर्की की राजनीति में सबसे अधिक विवादित मुद्दों में से एक है। प्रधानमंत्री बिनाली ने कहा कि संविधान में कुछ बदलाव पर सहमति बन गई है, लेकिन उन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में कुछ नहीं कहा, जिस पर राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगान जोर देते रहे हैं। रियो डी जनेरियो के महापौर एडुआर्डो पेस ने वादा किया है कि ओलंपिक विलेज में आधा अधूरा पड़ा काम इस गुरुवार तक पूरा कर लिया जाएगा। रियो के महापौर का कहना है कि अधूरा निर्माण कार्य ओलंपिक शुरू होने से 8 दिन पहले पूरा हो जाएगा। रियो ओलंपिक अगस्त के पहले हफ्ते से शुरू हो रहे हैं। तैराकी प्रतियोगिताओं की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फिना ने 7 रूसी खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कहा था कि रूसी खिलाड़ियों से जुड़े डोपिंग के मामलों में संबद्ध खेल की नियामक संस्था अंतिम फैसला करेगी। उसके बाद तैराकी पहला खेल है जिसमें संबद्ध नियामक संस्था ने रूसी खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, जापान के टोक्यो शहर में एक शख्स ने चाकू मारकर कम से कम 19 लोगों की हत्या कर दी है। इतना ही नहीं, इस हमले में 45 लोग घायल भी हुए हैं। हमला विकलांगों के एक केंद्र पर किया गया है और पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी कर लिया है। 26 साल के जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे इस केंद्र का पूर्व कर्मचारी बताया जा रहा है। इस घटना पर और जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बात की टोक्यो में कियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मुकेश विलियम से और पूछा कि क्या जानकारी है उनके पास इस बारे में।
ये जो कल हुआ है, सुबह हुआ है, एक विकलांग सुविधा में जो कि सगामिहारा कानागावा में है, जिसका नाम है सुकुई यामायुरियन काई। यहाँ पे एक 26 साल के व्यक्ति ने, जो कि एक भूतपूर्व कर्मचारी वहां का था, उसने 19 विकलांगियों को जान से मार दिया और 45 काफी घायल हैं, उसमें से कुछ काफी सीरियस हैं जो कि शायद न बच पाए। जगह जो है ये करीब 40 किलोमीटर टोक्यो से है। जानने वाली बात यह है कि ये भूतपूर्व कर्मचारी जो है, जिसका नाम सातोशी उएमात्सु है, जिसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया सुबह सुबह, उसने कहा कि विकलांग को दुनिया से हटा देने की चाह है उसको, ये वो चाहता है। ये बड़े पैमाने पर हत्या जापान में कभी कभी होती है।
ये जो केंद्र है वहाँ पर कितने लोग होंगे इस वक्त?
वहाँ पे तकरीबन 150 लोग हैं। ये जो लोग हैं वहाँ पे सब विकलांग हैं, या तो वो सो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि 1:30 बजे सुबह की बात है, क्योंकि पुराना कर्मचारी था वो अंदर आ गया। वहाँ पे पुलिस का पहरा है, लगा हुआ है, और वहाँ पे किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनके माता पिता हैं उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं और ना ही बता रहे हैं कि क्या हुआ है। तो पुलिस का घेरा चारों तरफ है, 45-40 गाड़ियां लगी हुई हैं और पुलिस लगी हुई है। तो अभी पूरी डिटेल जो है वो बाहर नहीं आ रही है।
ये जो कर्मचारी है, क्या ऐसी कोई आशंका है कि उसके किसी चरमपंथी संगठन से संबंध हो?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस शुरू से ही वो काफी वायलेंट हो गया था और घर में भी, और उसको ये नफरत हो गई थी विकलांगों से। अब ये पता नहीं चल रहा कि क्यों हो गई थी, हो सकता वहाँ पे काम करता हो और कुछ काम के दौरान उसको ऐसा महसूस हुआ हो, क्योंकि इनको संभालना इतना आसान नहीं है। तो उसके अंदर इतनी भारी स्ट्रेस हो गई है, बंदूक आम आदमी के पास नहीं है जापान में, हथियार नियंत्रण बहुत कठोर है यहाँ पे, और कुछ ही लोगों के पास राइफल का लाइसेंस है। जो जब यहाँ पे कुछ इस तरीके की बात होती है तो वो चाकू से होती है, और चाकू से यहाँ पे काफी होते हैं रेगुलरली, एक दो आदमियों को तो मार ही देते हैं रेगुलरली, कोई रीजन नहीं होता, ऐसे ही मार देते हैं।
टोक्यो के कियो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर मुकेश विलियम बता रहे थे उस घटना के बारे में, जिसमें एक शख्स ने विकलांगों के केंद्र पर हमला कर 19 लोगों की हत्या कर दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार ने चीन के 3 पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के इन पत्रकारों का वीजा इसी महीने के आखिर में खत्म होने वाला था। भारत ने वीजा की अवधि न बढ़ाने की कोई वजह नहीं बताई है। भारत के इस कदम की चीनी मीडिया में गंभीर प्रतिक्रिया हुई है। यहां तक लिखा जा रहा है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। हमारे सहयोगी अमरीश द्विवेदी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से पूछा कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है।
मुझे लगता है कि इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। एक तो ये कि उनको एडवांस नोटिस दिया गया है जाने के लिए, और दूसरा ये कि उनमें से 3 जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट को मैं अच्छे से जानता हूँ काफी वर्षों से, और जहां तक मेरी समझ है उनका जो व्यूज हैं वो काफी फ्रेंडली हैं इंडिया के प्रति। मीडिया में कहा गया कि ये जर्नलिस्ट शायद बेंगलोर में तिब्बती लीडर्स से मिले। ये कुछ समझ में नहीं आता कि ये कैसे कारण हो सकता है, क्योंकि भारत तो हमेशा ही कोशिश करता रहा है कि चीन का किसी तरह से बैक चैनल कांटेक्ट तिब्बत के लीडर्स से बना रहे ताकि वो अपनी बातों को सुलझा सके। तो इसके पीछे कोई दूसरा कारण शायद हो सकता है, पर कम से कम ये कारण नहीं हो सकता जो मीडिया में आया है। और ये भी बात ठीक है कि भारत के कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो कभी कभी एक दशक से ज्यादा भी बीजिंग में पोस्टेड रहे हैं, तो 3 या 4 साल कहना कि बहुत ज्यादा समय हो गया यहाँ रहने के लिए, उसको दोनों तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि वो ज्यादा समय है या नहीं है। चीन की प्रतिक्रिया से लगता है कि शायद कुछ कारण और है।
खबर आ रही है कि चीन ने NSG की मेंबरशिप के समय में भारत का बड़ा विरोध किया था, और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि भारत को मेंबरशिप नहीं मिल सकी। आपको क्या लगता है?
जो परिपेक्ष है इस खबर का वो उसको थोड़ा और तीखा बनाकर सामने करता है। ऐसा कहा गया है कि भारत और चीन के संबंधों में कुछ खटास आई है ये एनएसजी की मेंबरशिप को लेकर, और उसमें देखें कि भारत की प्रतिक्रिया ऐसी रही कि उन्होंने चीन को ही जिम्मेदार ठहराया है उसमें, जबकि हाँ चीन बहुत प्रभावशाली देश है उन देशों में जो अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे, पर करीब 10 या 12 देश अभी ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
चीन रिपरकशंस की बात कर रहा है कि इसके जो परिणाम हैं वो अच्छे नहीं होंगे, कैसे परिणाम हो सकते हैं वो?
शायद अब ग्लोबल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, उसकी बात आप कर रहे हैं। वो चीन में काफी तीखा अखबार माना जाता है कि वो थोड़ा बहुत ही रेडिकल बात करता है हमेशा ये न्यूज़पेपर, क्या उसको हम सरकारी व्यू की तरह से देखें या उसको मीडिया का व्यू देखें? उनको एक प्रेस्टीज इशू लगता है कि शिन्हुआ जो सबसे ताकतवर न्यूज एजेंसी है चीन की, उसके 3 जर्नलिस्ट को एक ही बार में आपने जाने को कहा है, तो वहां से इस बात पर चुप्पी तो नहीं हो सकती, चीन को कुछ ना कुछ उसके बारे में कहना ही होगा। दोनों सरकारों को आपस में अच्छी तरह से समझ होगी कि ये इस तरह का निर्णय क्यों लिया गया है, और शायद चीन में इसकी समझ भी होगी कि निर्णय क्यों लिया गया ऐसा। मुझे उम्मीद है कि वो टिट फॉर टैट वाली स्ट्रेटजी ना अपनाएं, हमारे जर्नलिस्ट को वहां से ना भेजें, क्योंकि फिर वो स्पाइरल जो एस्केलेशन है वो बढ़ता जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से बात कर रहे थे अमरेश द्विवेदी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
ये बीबीसी रेडियो है और आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, निखिल रंजन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की शिकार एक महिला के 24 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी है। कानूनन 20 हफ्ते तक ही गर्भपात किया जा सकता है, लेकिन इस मामले को असामान्य बताते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला लिया है। इसके लिए कोर्ट ने मुंबई के किंग एडवर्ड अस्पताल को 24 घंटे के भीतर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, जिसे ये फैसला देना है कि असामान्य आकार के भ्रूण के अबॉर्शन को कैसे संभव किया जाए। मुंबई से एक रिपोर्ट के साथ अश्विन अघोर।
देश में पहली बार एक विशेष मामला करार देते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक बलात्कार पीड़ित महिला को गर्भपात करने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि यह भ्रूण 24 हफ्तों का है और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की तहत 20 हफ्तों से ज्यादा के उम्र के भ्रूण का मेडिकल टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। पीड़िता ने इस प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा है कि यह संविधान की धारा 24 और 21 के खिलाफ है। पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के दौरान 22 जुलाई को उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के KEM अस्पताल को पीड़िता की मेडिकल जांच कर उसकी मांग पर अपनी राय देने को कहा था, जिसके बाद KEM अस्पताल में 7 सदस्यों वाली एक विशेष टीम बनाई गई जिसने पीड़िता की जांच की। अपने रिपोर्ट में टीम ने कहा था इस भ्रूण का विकास सही तरीके से नहीं हुआ है और इसमें कई कमियां हैं। डॉक्टरों का मानना था कि यदि यह बच्चा जन्म लेता है तो यह जीवित नहीं रह पाएगा। KEM अस्पताल के डीन डॉक्टर अविनाश सुपे ने बताया,
ये जो पेशेंट है वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आई थी। हमारे जो एक मेडिकल बोर्ड हमने एस्टेब्लिश किया था उसमें गायनेकोलॉजिस्ट थे, साइकेट्रिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऐसे सब लोग थे उसमें, और शनिवार के दिन हमने उसका तपास किया था और उसमें हमारे जो एक्सपर्ट्स है उन्होंने जो ओपिनियन दिया था उसमें ऐसा था कि ये 24 वीक का है और इसका जो बच्चा है उसको सर नहीं है, उसका सर अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, लेन सेकाली बोलते हैं उसको, तो उसके वजह से ये बच्चा जिंदा रहने के चांसेस एकदम कम है और इससे थोड़ा माँ को भी बाद में तकलीफ होने की शक्यता है, ऐसा उन्होंने लिखा था। और वो पेशेंट को भी साइकेट्रिकली शी वॉज उसको बहुत टेंशन था, इसलिए हमने उनको ऐसा एडवाइस किया था कि ये प्रेगनेंसी एडवाइजेबल है कि कंटिन्यू न करे पेशेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन लिया है और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट जैसे डिसीजन देंगे वैसे वो पेशेंट कैन नाउ गो एंड वो टर्मिनेट कर सकती हो।
ये थे डॉक्टर अविनाश सुपे। इन विशेषज्ञों की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंपी गई, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की भी राय मांगी थी, जिन्होंने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में एक ऐसा प्रावधान है, यदि मां की जान को खतरा है तो 24 हफ्तों बाद भी गर्भपात किया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर विचार के बाद उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता को यदि वह चाहती है तो गर्भपात करने की अनुमति दी है। बीबीसी हिंदी के लिए मुंबई से अश्विन अघोर।
असम में भयंकर बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों का पानी खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर बह रहा है, जबकि भूटान और सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है, लिहाजा बाढ़ पीड़ितों की संख्या एक ही दिन में बढ़कर दोगुनी हो गई है। सरकारी आंकड़ों में कल शाम तक बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 12.5 लाख बताई गई है। राज्य के कुछ इलाकों में बिजली, पानी और यातायात पूरी तरह से ठप है, जबकि बाढ़ प्रभावित संवेदनशील इलाकों में राहत और बचाव के लिए सेना की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है। सुनिए गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
इस समय पूर्वोत्तर राज्य असम के अधिकतर इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण स्थिति और खराब हो रही है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में सड़क संपर्क और बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। राज्य के 18 जिलों में करीब 12.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से कल शाम जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। वहीं नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आने से प्रभावित इलाकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। विभिन्न जिलों में खोले गए 220 राहत शिविरों में बाढ़ से बेघर हुए 88,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। प्रदेश में 99,000 हेक्टेयर से अधिक खेती की जमीन को बाढ़ के पानी से बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। गुवाहाटी में तैनात सेना के एक जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनीत न्यूटन कहते हैं,
बाढ़ की स्थिति जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पूरे लोअर असम में सारे जिलों में स्थिति काफी गंभीर है और आज सेना की मदद मांगी गई सिविल प्रशासन के द्वारा। तो सेना की टुकड़ियां विभिन्न जगहों पर फ्लड रिलीफ के लिए लग गई और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया और इसी के दौरान सेना ने आज करीब 350 लोगों को जो कि विभिन्न जगहों पे पानी में फंसे हुए थे उनको बचाया। सेना के जो डॉक्टर्स हैं और सेना के जो मेडिकल स्टाफ हैं वो हर जगह पर इन फ्लड रिलीफ टीम्स के साथ रहते हैं।
बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जिलों में धेमाजी, जोरहाट, धुबरी, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर है। धेमाजी जिले में 431 गांव बाढ़ की चपेट में आ जाने से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। राहत और बचाव कार्य के संदर्भ में धेमाजी जिला उपायुक्त विक्टर कारपेंटर ने कहा,
अब तक तो 19 कैंप खोला हुआ है, 17,000 है। ब्रह्मपुत्र का पानी बढ़ रहा है इसलिए ब्रह्मपुत्र एंड लाली एंड सब रिवर, ये पहाड़ के पानी कम जाने से, पहाड़ी पर रेनफॉल कम होने से यहाँ भी कम हो जाएगा।
असम में इस साल ये तीसरे चरण की बाढ़ है जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में हर साल बाढ़ से भारी नुकसान के बाद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषणा करने की मांग उठती है, लेकिन बाढ़ के खत्म होते ही सब कुछ फिर शांत हो जाता है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके बीजेपी नेता नवजोत सिद्धू ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पार्टी ने उन्हें पंजाब से दूर रहने को कहा था, इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू का कहना है कि पार्टी ने उन्हें पंजाब और अमृतसर से दूर रहने के लिए तो कहा, लेकिन इसकी वजह नहीं बताई। वो इसी बात से दुखी हैं। लेकिन सिद्धू की नाराजगी बीजेपी के लिए पंजाब में कैसे हालात पैदा करेगी, ये सवाल पूछा हमारे सहयोगी अमरेश द्विवेदी ने राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कौशल से।
नवजोत सिंह सिद्धू से पार्टी को काफी लगाव है, पार्टी उनको पसंद करती है, पार्टी उनका उपयोग भी करना चाहती है, लेकिन वो अकाली दल के साथ कम से कम इस समय गठबंधन तोड़ने की इच्छुक नहीं है। आने वाले चुनाव में भाजपा अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी जो विधायक है उनके रिश्ते अकाली दल के साथ ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए ये कठिन हो जाता है कि वो जब साझा चुनाव अभियान चले उसमें उनका उपयोग करे। पार्टियों के अपनी दिक्कतें होती हैं, पंजाब संवेदनशील राज्य है, सिख बहुल राज्य है, जम्मू कश्मीर पहले से अस्थिर है। ऐसी स्थिति में भाजपा को ऐसा लगता है कि अकाली दल भाजपा गठबंधन न केवल भाजपा के अपने राजनीतिक फायदे के लिए या अच्छे भविष्य के लिए जरूरी है, बल्कि प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द है जो बड़ी कठिनाई के साथ पंजाब में आया है उसको बनाए रखने के लिए उसकी ऐतिहासिक आवश्यकता है। तो अब पार्टी के लिए बड़ा कठिन चयन है।
2017 में चुनाव होंगे, उससे पहले बीजेपी के लिए ये क्या कोई अच्छी खबर है?
देखिए, खबरें कई बार अच्छी नहीं होती, सुखद नहीं होती, लेकिन आप उनको टाल भी नहीं सकते। कुल मिलाकर के किसी को उनका जाना अच्छा नहीं लगा। आपने अगर ये गौर से देखा होगा तो पंजाब भाजपा के अध्यक्ष जो हैं वो निरंतर कह रहे हैं कि सिद्धू अभी तक पार्टी में बने हुए हैं। सिद्धू का मुंह भी भाजपा से छूटा नहीं है। आज भी उन्होंने घोषणा ये नहीं की कि वो भाजपा से त्यागपत्र दे रहे हैं या दे चुके हैं, उन्होंने केवल राज्यसभा से त्यागपत्र दिया है। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ एक झिझक है रिश्ते तोड़ने की।
सिद्धू एक उदाहरण है, पर बड़े कद्दावर नेता हैं राज्य के अंदर, उनके अंदर जो असंतोष है इसका पार्टी के परफॉर्मेंस पे क्या कोई असर आपको दिखता है?
जैसे एक एक व्यक्ति के आने से फर्क पड़ता है, उसी तरीके से एक एक व्यक्ति के जाने से फर्क पड़ता है। परंपरा ये कहती है कि मनोनीत सदस्य को आप मंत्री न बनाएं, तो पार्टी फिलहाल उनको शायद इससे ज्यादा सम्मान देने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने त्याग पत्र दिया था तो ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि उनको आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रत्याशी घोषित करके चुनाव में जाएगी, लेकिन इस तरह की कोई घोषणा न तो उधर से हुई है, ना ही ऐसी कोई इच्छा झलकती है। अगर किसी स्थिति में अकाली दल के साथ भाजपा का गठबंधन अस्थिर हो जाए या टूट जाए, ऐसी स्थिति में नवजोत सिंह सिद्धू को वो लोग भाजपा के मुख्यमंत्री पद के भविष्य के किसी समय के प्रत्याशी के तौर पर भी देखते हैं, पर पार्टी के लिए संकट वर्तमान का है और वर्तमान में भाजपा के सामने विकल्प नहीं है। सिद्धू शायद इंतजार करने के पक्ष में नहीं है।
राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कौशल बता रहे थे कि सिद्धू के इस्तीफे से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं बीजेपी में और पंजाब में। और अब आगे बढ़ने से पहले आइए अखबारों पर नजर डाल लेते हैं। संदीप सोनी अखबारों के साथ स्टूडियो पहुंच चुके हैं, क्या है संदीप जी आज अखबारों में?
सबसे पहले शुरू करते हैं अंग्रेजी के अखबार इंडियन एक्सप्रेस से। इंडियन एक्सप्रेस ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के महानिदेशक के दुर्गा प्रसाद के बयान को अपनी पहली खबर बनाया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर में युवाओं के साथ जो हुआ उस पर दुख है, लेकिन पैलेट गन जो है वो सबसे कम घातक विकल्प है। मतलब इससे कम घातक
उनके पास नहीं है, कुछ क्या नहीं है। गैस की गोलियां और वो सब
नहीं, उनका जिक्र नहीं किया। और निखिल, ये वही पैलेट गन है जिनसे निकले छर्रों ने कश्मीर में कई युवाओं की आंखों की रोशनी छीन ली है।
इसकी बड़ी प्रतिक्रिया भी तेज हो रही है वहां पर।
और इंडियन एक्सप्रेस में ही एक और खबर ध्यान खींच रही है, वो खबर ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व अधिकारी हैं डॉक्टर BR मणि, उन्हें राष्ट्रीय संग्रहालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। खास बात यह है कि डॉक्टर मणि और उनकी टीम ने ही 13 वर्ष पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अयोध्या में जहाँ 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद थी, उसके नीचे 10वीं शताब्दी के एक मंदिर के अवशेष मिले हैं। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर डॉक्टर मणि को हटा दिया गया था, जिन्हें अब मोदी सरकार ने राष्ट्रीय संग्रहालय का प्रमुख बना दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया देखें, हिंदुस्तान टाइम्स पहले देखते हैं तो इसकी खबर, पहली खबर कहती है कि मुंबई पुलिस की विशेष शाखा ने दावा किया है कि विवादास्पद इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक और उनके गैर सरकारी संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ने लगभग 800 लोगों का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करवाया। खबर में कहा गया है कि जाकिर नायक ने धर्मांतरण के बदले लोगों को धन दिया और ये धन उन्हें विदेशों से मिला था। यदि आरोप सही पाए गए तो जाकिर नायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, हिंदुस्तान टाइम्स में ये खबर है। इसके अलावा जोधपुर हाईकोर्ट ने शिकार के दो मामलों में निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सलमान खान को बरी कर दिया है। ये खबर हिंदी अंग्रेजी के तमाम अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण ने लिखा है सलमान खान की बंदूक से नहीं मरे थे हिरण, और दैनिक भास्कर ने इस बात पर हैरानी जताई है कि निचली अदालत में जिन सबूतों ने सजा दिलाई थी उन्हीं सबूतों के आधार पर सलमान खान को बरी कर दिया गया।
बहुत शुक्रिया संदीप सोनी अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। जैसा कि आपने संदीप सोनी से अखबारों की समीक्षा के दौरान भी सुना कि कश्मीर से अधिकतर खबरें हिंसा और चरमपंथ की आती हैं। कल हमने आपको दो पत्थर मारने वाले युवकों से बातचीत भी सुनवाई थी। राज्य की रंगारंग संस्कृति हिंसा से दब जाती है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जम्मू के प्रसिद्ध थिएटर आर्टिस्ट बलवंत ठाकुर संस्कृति से शांति का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से। 2 हफ्ते पहले हुई हिंसा के कारण कश्मीर वैली में उनके शो स्थगित जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने इस समय को अमरनाथ यात्रियों के लिए डांस शो करा करके इस्तेमाल किया। हमारे साथी जुबैर अहमद ने उनसे मुलाकात की, आइए सुनते हैं कि दोनों में क्या बात हुई।
देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है जो विभिन्न रंगों में रंगा हुआ है और बाहर से जो इतने लोग आते हैं उनके सामने जम्मू कश्मीर का इम्पैक्ट यही है साहब, यहाँ कर्फ्यू लगा है, यहाँ ये ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। एक और बड़ा एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि वी नीड टू ग्लोरीफाई, वी नीड टू टेक प्राइड सब जम्मू कश्मीर के लोगों को होना चाहिए, जो उसकी डाइवर्सिटी है, अमेजिंग डाइवर्सिटी है। कोई स्टेट हिंदुस्तान की ऐसी नहीं है जिसके पास इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर है जिसके पास, आपके पास एक तरफ जब कश्मीरी कल्चर है, वहीं डोगरी कल्चर है, वहीं लद्दाखी कल्चर है, वहीं बालती कल्चर है, वहीं पे गोजरी कल्चर है, वहीं पे पहाड़ी कल्चर है, वहीं पे आपके पास भद्रवाही कल्चर है और उसके और भी सब रीजन्स में छोटे छोटे कल्चर है, गुरेजी है, चीना है, तो हर एक का अलग रंग है, अलग रूप है, अलग स्वरूप है, अलग उसका नरेटिव है। तो ये सारे को मैंने एक कड़ी में पिरो करके हम इस डाइवर्सिटी को, और मुझे लगता है कि आपस में थोड़ा जो रीजनल डिवाइड है जो और इंटीग्रेट करने की बहुत ज़रूरत है। हम लोग इंटीग्रेट जब घर को नहीं करेंगे तो मुझे लगता है हम बड़ी बात नहीं कर सकते। आप अगर आप वीज़ा मतलब जम्मू कश्मीर के यूथ को अगर किसी फ्रेम में डालें और देखें पूरे देश में यूथ क्या कर रहा है, उसके उनका इंगेजमेंट स्पोर्ट्स में है, उनका इंगेजमेंट पोइट्री में है, म्यूज़िक में है, थिएटर में है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो आप उसके कंट्रास्ट में यहाँ पर आएँ तो यहाँ आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग लैग करते रहे।
पिछले 26-27 सालों से मिलिटेंसी है, हालात सही नहीं है, तो ऐसे में आपको लोग मिलते हैं जो इंगेज होते हैं, जो आपकी बात सुनते हैं?
बिल्कुल मिलते हैं। आपके जो हालात हैं वो तो बड़े डिस्टर्बिंग है, लेकिन उससे पहले इतने काफ़ी इनिशिएटिव्स हमारे लगातार, मैंने लगभग 15 साल से मैंने काम कर रहा हूँ, रेगुलरली मैंने कश्मीर में काम किया है और विशेष रूप से वो जो कश्मीर की जो जितनी भी एक्सप्रेशंस थे, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस थे, खासतौर पे जो हम लोग जो ट्रेडिशनल भान पाथेर है, जो मतलब जो कम्युनिटी के साथ एक लार्जर जो जुड़ा हुआ है, उसके बहुत सारे इनिशिएटिव्स मैंने लिए और जो भान पाथेर का रिवाइवल था वो उसको लेकर के, और मैंने देखा इस समय मैंने जब शुरू में भान पाथेर रिवाइवल का काम शुरू किया था तो 20 ग्रुप्स को लेकर के काम किया था और हर ग्रुप में 50 लोग थे, तो यूँ समझिए कि 1000 कलाकार जो है खाली जो ट्रेडिशनल थिएटर स्टाइल के लोग हैं वो डायरेक्टली मेरे साथ जुड़े रहे। आई एम अमेज्ड टू सी कि वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन।
जम्मू के थिएटर आर्टिस्ट बलवंत ठाकुर से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। और आइए अब सुन लेते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। रियो जाने से पहले डोप टेस्ट में फंसे 74 किलो भार वर्ग के पहलवान नरसिंह यादव के मामले ने कल एक नया मोड़ तब ले लिया जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह से विवाद की पूरी जानकारी मांगी। दूसरी तरफ नरसिंह यादव को उम्मीद है कि उनके रियो जाने का रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है।
सभी जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ और मैंने आज तक कभी कुछ नहीं किया, क्योंकि पिछले 15 साल से इंटरनेशनल लेवल में कर रहा हूँ परफॉर्मेंस। सभी चीजें क्लियर है कि मैं क्यों लूंगा, और जो भी शॉल्ट आए हुए हैं डोप में तो कोई खिलाड़ी उसे यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे स्पोर्ट्स में किसी को बेनिफिट में आता ही नहीं। जानबूझकर किस साजिश करके मुझे फंसाने के लिए उसमें डाला गया है। आईओ भी, मेरी फेडरेशन भी और खेल मंत्रालय भी, मुझे उम्मीद है कि सब मेरे फेवर में है और सब मिलकर शॉर्ट आउट करेंगे और मुझे जल्दी रियो भेजा जाएगा।
अब खेल मंत्री विजय गोयल की बात भी सुन ले।
इस केस में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सीधी सी बात यह है, जो रेसलर है जब उनका डोप टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव आया, तो उनको प्रोविजनल सस्पेंशन के अंदर रख दिया गया, तब तक ये माना जाएगा कि वो खेल नहीं पाएंगे। इस वाले केस के अंदर अभी पूरी जांच इसलिए नहीं हुई है कि जो एक प्रेजेंटेशन और है वो और चेक हो जाएगा, उसके बाद ये फाइनल हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी कि नरसिंह यादव जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे।
पहले सुशील कुमार से लंबा विवाद और अब डोप का शिकार हो जाना, ऐसी स्थिति नरसिंह यादव के लिए ऐसी ही है जैसे कोई आसमान से गिरे खजूर में अटके।
खेल समाचारों के साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। जापान के मीडिया से मिल रही खबरों के मुताबिक राजधानी टोक्यो के नजदीक विकलांगों की देखभाल के लिए बने एक रिहायशी केंद्र पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला किया है जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। भारत ने पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग के अधिकारियों से कहा है कि वो स्कूलों में पढ़ने वाले अपने बच्चों को वहां से हटा दें और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम पाकिस्तान से बाहर कहीं करें। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। तैराकी प्रतियोगिताओं की अंतर्राष्ट्रीय नियामक संस्था फिना ने 7 रूसी खिलाड़ियों को रियो ओलंपिक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तुर्की के प्रधानमंत्री बिनाली यिल्दिरिम ने कहा है कि उनकी सरकार देश के नए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए सभी मुख्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करना चाहती है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने और समाचार आपको सुना रहे थे संदीप सोनी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।